आज है 12 मई दिन शुक्रवार। स्वीकार कीजिए संदीप सोनी का नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए चुनाव आयोग ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। मानव अधिकारों पर काम कर रहे संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने कश्मीर घाटी में सोशल मीडिया और मोबाइल इंटरनेट पर पाबंदी हटाने की अपील की।
मोदी जी बात करते हैं कि डिजिटल इंडिया होना चाहिए और फिर उसको प्रमोट किया जाता है, लेकिन वहीं पे कश्मीर में सोशल मीडिया को बैन कर दिया जाता है, इंटरनेट को बैन कर दिया जाता है। तो इसको लेके फिर यहाँ पे लोग सोचने पे मजबूर होते हैं कि आखिर कश्मीर डिजिटल इंडिया में शामिल क्यों नहीं है।
बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती पर पार्टी के पुराने नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने गंभीर आरोप लगाए।
कहने लगी 50 करोड़ रुपए की पार्टी को जरूरत है। बोले अपनी प्रॉपर्टी बेच दो।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार दिनेश उप्रेती से। चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की विश्वसनीयता पर उठे सवालों के बीच आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। पंजाब सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद 16 राजनीतिक दलों ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए थे। आयोग की ओर से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक सर्वदलीय बैठक के लिए 7 राष्ट्रीय दलों के अलावा 48 राज्य स्तरीय दलों को बुलाया गया है। इस बैठक में ईवीएम और वीवीपैट के मुद्दे पर चर्चा होगी। आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में ईवीएम जैसी दिखने वाली एक मशीन के जरिए दावा किया था कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि न्याय विभाग के अधिकारी अगर सिफारिश भी नहीं करते तब भी वो संघीय जांच एजेंसी एफबीआई के निदेशक जेम्स कोमी को हटाना चाहते थे। एनबीसी टीवी को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने दावा किया कि कोमी अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रहे थे। ट्रंप ने कहा, वो नाटकबाज हैं, वो दिखावा करने वाले हैं। एफबीआई मुश्किल में थी, आप जानते हैं, मैं जानता हूं, हर कोई ये जानता है। एफबीआई के बीते एक साल के कामकाज को देखिए, इसकी साख और विश्वसनीयता को बहुत नुकसान पहुंचा है। ये थे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। मानवाधिकारों पर काम कर रहे संयुक्त राष्ट्र के 2 विशेषज्ञों ने भारत सरकार से भारत प्रसादित कश्मीर में सोशल मीडिया और मोबाइल इंटरनेट पर लगी पाबंदी खत्म करने की अपील की है। अभिव्यक्ति की आज़ादी और मानवाधिकारों के इन विशेषज्ञों ने कहा है कि घाटी के लोगों पर लगी ये पाबंदी सामूहिक सजा की तरह है। भारत प्रसादित कश्मीर में 26 अप्रैल को 16 सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पर पाबंदी लगा दी गई थी। सरकार का कहना था कि राष्ट्र विरोधी तत्व इन वेबसाइट्स का इस्तेमाल भड़काऊ संदेशों को फैलाने में कर रहे हैं। वेनेजुएला की राजधानी काराकस में हजारों लोगों ने जुलूस निकाला और निकोलस मादुरो की सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ये जुलूस बुधवार को विरोध प्रदर्शन के दौरान एक व्यक्ति की मौत के बाद निकाला गया। वेनेजुएला में संविधान फिर से लिखे जाने की सरकार की घोषणा के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। विपक्षी नेता हेनरिक कैप्रिल्स ने सरकार से इस्तीफा देने की मांग की है। हेनरिक कैप्रिल्स ने कहा, इस सरकार के पास वेनेजुएला के लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है। मौत और अंधेरे के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार अब सत्ता छोड़े और हम वेनेजुएला के लोगों को शांति और सुख से रहने के लिए नया दौर चुनने का मौका दे। ये थे विपक्षी नेता हेनरिक कैप्रिल्स के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। आर्कटिक क्षेत्र के 8 देशों के विदेश मंत्रियों ने ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन तत्काल कम करने पर सहमति जताई है। इन देशों की ये सहमति जलवायु परिवर्तन पर अमरीकी नीति की अनिश्चितता के बीच आई है। अमरीकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने अलास्का में हुई बैठक में मंत्रियों से कहा कि अमरीका जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करेगा। फ्रांस के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो की पार्टी ने अगले महीने होने वाले संसदीय चुनावों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। 13 महीने पुरानी इस पार्टी के आधे से अधिक उम्मीदवारों ने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा है। साथ ही तकरीबन आधी सीटों पर महिला प्रत्याशियों को उतारा गया है। बीबीसी समाचार।
भारत भारत में सुबह हो चुकी है, वक्त हुआ है 6:35, बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा। नमस्कार भारत, सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, उसी डिजिटल इंडिया के एक हिस्से भारत प्रशासित कश्मीर में मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर पाबंदी लगी हुई है। भारत सरकार इसे सुरक्षा के मद्देनजर जरूरी मानती है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ मानते हैं कि कश्मीर के लोगों के लिए यह पाबंदी सामूहिक सजा की तरह है। करेंगे चर्चा इस पर कार्यक्रम में आगे, लेकिन पहले बात आज होने वाली सर्वदलीय बैठक की। चुनाव आयोग ने आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वही मशीन है जिसमें छेड़छाड़ के आरोप लगे, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी बड़े बड़े दावे कर चुकी है। इस खबर पर और जानकारी के साथ निखिल रंजन।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर चुनाव आयोग के भरोसा दिलाने के बाद भी राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए भारत के चुनाव आयोग ने इस मसले पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। चुनाव आयोग कई बार कह चुका है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती, लेकिन कई राजनीतिक दल इसे लेकर सवाल उठा रहे हैं। हाल ही में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की विधानसभा में ईवीएम जैसी एक मशीन के साथ छेड़छाड़ का प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष ने बीबीसी से बातचीत में कहा कि ऐसी कोई मशीन नहीं जिसके साथ गड़बड़ नहीं की जा सकती, इसलिए चुनाव आयोग को पुराने तरीके से ही चुनाव कराना चाहिए। आशुतोष ने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव पर भी पार्टी ने उंगली नहीं उठाई थी, लेकिन हाल में हुई घटनाओं को देखने के बाद उसे ईवीएम पर शंका हुई है।
ये सवाल तब खड़ा हुआ जब भिंड की ईवीएम ने ये दिखाया कि वहाँ पे जो भी वोट पड़ रहे हैं वो बीजेपी को पड़ रहे हैं, जब धौलपुर के अंदर ईवीएम में ये नजर आया कि जो भी वोट पड़ रहे हैं वो बीजेपी को वोट पड़ रहे हैं, जब महाराष्ट्र के पुणे से ये खबर आई कि वहाँ एक बूथ पे उस परिवार के उस कैंडिडेट को एक भी वोट नहीं मिली जबकि उसने खुद वहाँ वोट डाला था। अभी एक विधानसभा की बात पुणे के आसपास की है जहाँ पे कि एक विधानसभा में एक बूथ पे 90% मुस्लिम आबादी थी और वहाँ बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया। तो कुछ ऐसी हैरतअंगेज बातें हुई जिससे लोगों के मन में शक हुआ और तब हमने इस सवाल को खड़ा किया और हमने कहा कि हम टैम्पर करके दिखा सकते हैं, इसीलिए हमने विधानसभा के अंदर जो ईवीएम जैसी मशीन थी उसको टेम्पर करके दिखाया। ये
आम आदमी पार्टी का ये भी कहना है कि बूथ लूटने या फिर बैलेट पेपर फाड़ने जैसी घटनाएं कानून व्यवस्था से जुड़े मसले हैं और उन्हें ईवीएम लागू करने का आधार बताना उचित नहीं है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखने वाली बहुजन समाज पार्टी को भी ईवीएम पर संदेह है और उसने भी बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग रखी है। पार्टी की दलील है कि जब तकनीकी रूप से विकसित देशों में बैलेट पेपर से वोट होते हैं तो भारत में क्यों नहीं। बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता गया चरण दिनकर ने कहा कि चुनाव अधिकारी तकनीकी रूप से इतने दक्ष नहीं कि ईवीएम के हेर फेर का पता लगा सकें।
एक जिले का जिला निर्वाचन अधिकारी होता है और वो इतिहास का पढ़ा हुआ है और वो IAS बन गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो ईवीएम मशीन का या ईवीएम मशीन के पार्टों का उसके इंटरनल फंक्शन के बारे में वो जानकारी रखे। ईवीएम मशीनों में टेम्परिंग हो सकती है, साइलेंट मोड पर रिजल्ट डाला जा सकता है और जो प्रोग्रामिंग जैसे सेट कर दी जाएगी वैसे मशीन काम करेगी। माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर जो होते हैं वो जान सकते हैं, लेकिन जो तकनीकी के मामले में शून्य हो, कोई ज्ञान न हो, वो कैसे कह सकता है कि ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी नहीं की जा सकती।
1989 में जब पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग हुआ तो इसे बूथ लूटने और उस वक्त की तमाम चुनावी गड़बड़ियों को दूर करने का तरीका माना गया। धीरे धीरे इसे पूरे देश में लागू करने की क्षमता हासिल हुई। उस वक्त चुनाव आयुक्त रहे SS धनोवा कहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव में होने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए ईवीएम आया और फिर से बैलेट पेपर की ओर लौटना उचित नहीं होगा।
इस पर कोई ह्यूमन एजेंसी का कोई हाथ नहीं था, ये इलेक्ट्रॉनिक था मशीन, उसमें वोट आ गया एक दफा तो पक्का उसमें डिपेंडेबल रिजल्ट था। वो इसलिए कि वो ह्यूमन सिस्टम में मैनिपुलेट होता था। जब पंजाब में इलेक्शन हुआ है तो उसमें रिटायरिंग ऑफिसर रहे उसकी जो बिमल खालसा वो जीत रही थी उपेंद्र सिंह की वाइफ, उसको काफी वोट उसको रिजेक्ट किए थे, तो वो पॉसिबल नहीं था मशीन के बाद। अगर उस पर जाए पिछले सिस्टम पर बैलेट पेपर वाले पर तो गलत होगा।
ईवीएम का विरोध करने वाले राजनीतिक दल बैलेट पेपर से कम पर मानने को तैयार नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग के लिए ईवीएम को हटाना इतना आसान भी नहीं होगा। राजनीतिक पार्टियों की चिंता बड़ी है और चुनाव आयोग उन्हें भरोसा दिलाना चाहता है, लेकिन अब तक इसका कोई रास्ता सामने नहीं आया है। आज की सर्वदलीय बैठक से कोई हल निकलेगा इसकी तो उम्मीद कम है, लेकिन शायद दोनों पक्ष एक दूसरे को अपनी मुश्किलों का एहसास दिला सकें। निखिल रंजन, बीबीसी दिल्ली।
हिंदी में ऐसे शब्द शायद बहुत कम होंगे जिनके साथ उनके विपरीत शब्द हमेशा साथ साथ चलते हैं। ऐसा ही एक शब्द है आरोप, जिसके साथ प्रत्यारोप जुड़ा रहता है। आरोप प्रत्यारोप की ये जुगलबंदी कल तब नजर आई जब बहुजन समाज पार्टी से निकाले गए नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने पार्टी प्रमुख मायावती को आड़े हाथों लिया और मायावती ने उन्हें फौरन झटक दिया। इस खबर पर और जानकारी दे रहे हैं लखनऊ से समीरात्मज मिश्र।
कभी बीएसपी में नंबर दो या तीन की हैसियत रखने वाले नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी पार्टी से निकाले जाने के एक दिन बाद मीडिया से मुखातिब हुए। पार्टी नेता मायावती पर कई तरह के आरोप लगाए, जिनमें एक अहम आरोप ये भी था जो बीएसपी से बाहर होने वाला लगभग हर नेता लगाता है।
कहने लगी 50 करोड़ रुपए की पार्टी को जरूरत है। मैंने कहा भाई जी मैं कहाँ से लाऊं, मेरे पास तो नहीं है। बोले अपनी प्रॉपर्टी बेच दो। बोली देखो अगर आगे बढ़ना है तो आपके लिए ये अच्छा है। इनके कई गिरोह है और एक गिरोह ऐसा भी है जो अपराधियों का है। वो अपराधियों का गिरोह क्या करता है, सुश्री मायावती जी के खिलाफ किस चैनल ने दिखाया, किस अखबार ने दिखाया, गाड़ी तोड़ दो आग लगा दो, कौन सी नेता बोली उसको आग लगा दो उसके घर में, कौन से नेता खिलाफ बोले उनके बारे में गलत नारे लगवा दो, अब शब्द बुलवा दो, पिटवा दो, जान से मरवा दो। और उस गिरोह के मैं सरगना से लेके एक एक सदस्य को जानता हूँ।
नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि उन्हें पता था कि पार्टी से निकाल दिया जाएगा, बावजूद इसके उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी।
मैं जानता था कि मुझे पार्टी से निकाला जाएगा, लेकिन जिस पार्टी को 64 साल मैंने खून पसीने से सींच करके मानवर कांचीराम साहब के साथ काम करते हुए यहाँ तक पहुँचाने का काम किया था, जिस पार्टी के लिए मैंने अपनी मरी बेटी का मुंह नहीं देखा, उस पार्टी को मैं छोड़ करके कैसे चला जाता।
यही नहीं, उन्होंने मायावती और पार्टी महासचिव सतीश मिश्र पर उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया और अपनी बातों के समर्थन में मायावती से बातचीत के कुछ नमूने भी सुनवाए। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के कुछ ही देर बाद बीएसपी नेता मायावती भी प्रेस से रूबरू हुई और नसीमुद्दीन पर आरोपों की एक बार फिर उन्होंने झड़ी लगा दी। मायावती ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को ब्लैकमेलर तक कह डाला।
जो पार्टी के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोग थे उन्होंने ये बताया कि बहन जी नसीमुद्दीन सिद्दीकी जिसको आपने इधर पछमे में लगाया है ये बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है, ये पैसा कमाता और जो सही लोग हैं पार्टी के उनके सामने इस किस्म की बातें करता है और उनको प्रवोक करता उकसाता है, उनकी बातें टेप कर लेता है और जो इसके जेब के लोग हैं तो उनको आगे करने के लिए उनको फिर दबाता है कि ये टेप हम बहन जी को सुना देंगे तो बहन जी आपको पार्टी से निकाल देगी।
मायावती का कहना था कि उन्होंने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज के लोगों को पार्टी से जोड़ने की अहम जिम्मेदारी दी थी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। इस बीच नसीमुद्दीन के समर्थन में बीएसपी छोड़ने वाले नेताओं का क्रम बना हुआ है। उनके गृह जनपद बांदा में उनके समर्थकों ने मायावती के खिलाफ नारेबाजी भी की। नसीमुद्दीन सिद्दीकी बीएसपी नेता मायावती के कभी बेहद करीबी माने जाते थे। पिछले साल बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह और उनकी बेटी के खिलाफ कथित अभद्र भाषा को लेकर नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कराया गया था। समीरात्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
भारत के एक बड़े व्यापारी हैं, नाम है सज्जन जिंदल। सज्जन जिंदल पिछले महीने के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान गए थे जहां वो प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मिले थे। तब बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन अब पाकिस्तान सरकार और सेना के आला अधिकारियों ने बीबीसी को बताया है कि ये मुलाकात बैक चैनल डिप्लोमेसी का हिस्सा थी। बीबीसी उर्दू संवाददाता आसिफ फारूकी की रिपोर्ट सुनिए मोहनलाल शर्मा से।
पाकिस्तान सरकार और सेना के आला अधिकारियों ने बीबीसी को बताया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ भारतीय व्यापारी सज्जन जिंदल की हालिया अनौपचारिक मुलाकात बैक चैनल डिप्लोमेसी का हिस्सा थी। भारत में राजनीतिक प्रभाव रखने वाले अरबपति व्यापारी सज्जन जिंदल ने अपने कुछ मित्रों और रिश्तेदारों के साथ पिछले महीने पाकिस्तान में ही नवाज शरीफ से मुलाकात की थी। तब पाकिस्तान के विदेश विभाग ने इसे अनौपचारिक और व्यक्तिगत मुलाकात बताते हुए ज्यादा कुछ बताने से इनकार कर दिया था। इसी तरह प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम शरीफ ने भी ट्विटर पर कहा था कि सज्जन जिंदल उनके पिता के पुराने दोस्त हैं और दो दोस्तों की मुलाकात को गलत रंग न दिया जाए। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण आधिकारिक सूत्रों ने बीबीसी को बताया कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अपनी एक हालिया बैठक में आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा से कहा कि सज्जन जिंदल भारतीय अधिकारियों के इशारे पर उनसे मिले थे और ये बैठक भारत पाकिस्तान के बीच तनाव घटाने की कोशिशों का हिस्सा है। दूसरी ओर सैन्य नेतृत्व ने भी सज्जन जिंदल की प्रधानमंत्री से मुलाकात पर अपने अधिकारियों को विश्वास में लिया था और बताया था कि ये मुलाकात बैक चैनल डिप्लोमेसी का हिस्सा है। नवाज शरीफ और सज्जन जिंदल की मुलाकात पर पाकिस्तान में कुछ हलकों में चिंता जताई गई है। हालांकि पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व ने स्पष्ट किया है कि कथित भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को दोनों देशों के बीच भविष्य में किसी चैनल के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व ने यह भी स्पष्ट किया कि कुलभूषण पर कोई लेन देन नहीं होगा और आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद मामले को तार्किक अंजाम तक पहुंचाया जाएगा।
रिपोर्ट सुना रहे थे मोहनलाल शर्मा। सुबह का वक्त, चाय की प्याली और अखबार, आप लीजिए चाय की चुस्की। हम आपको बताते हैं दिल्ली से छपने वाले अखबार आज क्या कह रहे हैं। अखबारों के साथ स्टूडियो में हाजिर हैं दिनेश उप्रेती।
सज्जन जिंदल और नवाज शरीफ की मुलाकात बैक चैनल डिप्लोमेसी का हिस्सा थी, ऐसा बीबीसी की खबर में कहा गया है और ये खबर सभी अंग्रेजी अखबारों के, लगभग सभी अंग्रेजी अखबारों के पहले पन्ने पर है। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस ने तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। अखबार लिखता है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या तीन तलाक धार्मिक प्रथा है? यदि इस पर रोक लगा दी जाए तो मुसलमान पुरुष तलाक कैसे लेंगे? इंडियन एक्सप्रेस की ही एक सुर्खी है, एज मोदी लैंड्स इन कोलंबो, लंका सेज नो टू चाइना सबमरीन विजिट। अखबार ने दो वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के हवाले से कहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के कोलंबो पहुंचते ही श्रीलंका ने कहा कि उसने पनडुब्बी खड़ा करने के चीन के आग्रह को ठुकरा दिया है। चीनी पनडुब्बी को खड़ा करने की इजाज़त को लेकर 2014 में भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया था। एक वरिष्ठ रक्षा अधिकारी ने अखबार को बताया कि चीन ने 14 और 15 मई को पनडुब्बी खड़ी करने की इजाज़त मांगी थी। अब हिंदू का रुख करते हैं। हिंदू की खबर है, भड़काऊ भाषण मामले में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी पर नहीं चलेगा मुकदमा। खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर 2007 में गोरखपुर में हुए दंगे के मामले में मुकदमा नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने यूपी के मुख्यमंत्री पर मुकदमा चलाने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। योगी आदित्यनाथ पर 2007 में गोरखपुर में हुए दंगों के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप है।
क्या आपको लगता है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं होती उत्तर प्रदेश में, तब भी शायद इसी तरह की बात सामने आती निकल कर? अब
हाँ, लेकिन ये क्योंकि इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में ऐसा जवाब दिया है तो इस पर कहना मुश्किल है कि सरकार ने ऐसा जवाब क्यों दिया। हिंदू ने जस्टिस कर्णन के सजा रुकवाने के अनुरोध को पहले पन्ने पर जगह दी है। कोर्ट की अवमानना के मामले में 6 महीने की सजा का सामना कर रहे कलकत्ता हाई कोर्ट के जज जीएस कन्नन की ओर से गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर सजा का आदेश वापस लेने का अनुरोध किया गया। हिंदू की ही एक और खबर है जिसमें सरकारी नियामक ने भारत में जीन संबंधित सरसों यानी कि जीएम मस्टर्ड के व्यावसायिक उपयोग की सिफारिश की है।
जेनेटिकली मॉडिफाइड, आनुवंशिक रूप से संवर्धित फसलें जो होती हैं।
हालांकि आरएसएस से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच ने इस कदम की आलोचना की है। संगठन का कहना है कि जीएम सरसों के वाणिज्यिक उपयोग को मंजूरी देने का असर कृषि से जुड़ी गतिविधियों पर पड़ेगा।
बहुत शुक्रिया।
बीबीसी इंडिया पोल।
क्या तीन तलाक के मुद्दे के बहाने राजनीति की जा रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि इसे राजनीति का मुद्दा न बनाया जाए। क्या तीन तलाक ही मुसलमान औरतों की एकमात्र समस्या है? शिक्षा, रोजगार, बराबरी जैसे मुद्दे पर बहस क्यों नहीं होती? इस बार इंडिया बोल में इसी विषय पर चर्चा होगी। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 13 मई को शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 या 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
बात अब भारत प्रशासित कश्मीर की कर रहे हैं। मानव अधिकारों पर काम कर रहे संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने कश्मीर घाटी में सोशल मीडिया और मोबाइल इंटरनेट पर पाबंदी हटाने की अपील की है। ये पूरी खबर आप bbchindi.com पर पढ़ सकते हैं। इस खबर के आने के बाद मैंने ये जानने की कोशिश की कि कश्मीरी युवा, जो पढ़ा लिखा पेशेवर कश्मीरी है, वो इस पाबंदी पर कैसे रिएक्ट करता है, कैसे अपनी प्रतिक्रिया देता है और इंटरनेट सोशल मीडिया के बिना काम कैसे करता है।
मैं बारामूला कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं, मेरा नाम मुश्ताक है। और मुझे लगता है कि सिर्फ मैं ही नहीं, मैक्सिमम लोग जो कश्मीर के हैं जो एक पॉजिटिव यूज करते हैं इंटरनेट का, वो इसकी वजह से सफर हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट को इसके बजाय कि एक ब्लैंकेट बैन लगाया जाए इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे, इसका कुछ अल्टरनेट सोचना चाहिए ताकि जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उन पे काबू पाया जा सके और ना कि उसकी वजह से सारे लोगों को सजा दी जाए। अब 2012 से अभी तक 28 बार इंटरनेट पे पाबंदी लग चुकी है, लेकिन स्टिल कश्मीर में वायलेंस होता है। इवन जब से सोशल मीडिया को बैन किया है उसके बाद भी प्रोटेस्ट कॉलेजेस में हो रहे हैं, हंदवाड़ा में हुआ है, फिर उसके बाद भी किलिंग हो रही है और उससे कुछ कंट्रोल हुआ नहीं है। दूसरी बात ये कि इसका जो नेगेटिव पॉइंट ये होता है, एक तो जब पूरे इंडिया में जिस टाइप से डिजिटल इंडिया की बात हो रही है और मोदी जी बात करते हैं कि डिजिटल इंडिया होना चाहिए और फिर उसको प्रमोट किया जाता है, लेकिन वहीं पे कश्मीर में एक ऐसा रीजन है इंडिया का कि जहां पे सोशल मीडिया को बैन कर दिया जाता है, इंटरनेट को बैन कर दिया जाता है। तो इसको लेके फिर यहां पे लोग सोचने पे मजबूर होते हैं कि आखिर वो डिजिटल इंडिया कहां है, कश्मीर डिजिटल इंडिया में शामिल क्यों नहीं है। मुझे लगता है कि ये सामूहिक सजा है, क्योंकि ठीक है अगर कुछ लोग वायलेशन करते हैं, कुछ लोग एंटी नेशनल भी हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स भी हैं, उनकी वजह से जो मैक्सिमम लोग हैं जो इसका इंटरनेट का पॉजिटिव यूज करते हैं उनको सजा दी जाती है उसकी वजह से। और उसके लिए गवर्नमेंट को कोई अल्टरनेट ऐसा तरीका सोचना चाहिए कि ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उन पर लगाम कसी जाए, सारे पूरे एक एरिया को, पूरे लाखों लोगों को उसकी सजा ना दी जाए। तो मुझे लगता है कि यह सजा है और इसको गवर्नमेंट को कुछ अल्टरनेट सोचना चाहिए।
मुश्ताक साहब, ये बताइए कि सोशल मीडिया पे जो बैन है कश्मीर घाटी में, तो रोजमर्रा की जिंदगी से कुछ एग्जाम्पल दे पाएंगे आप, किस तरह से फर्क पड़ता है जब बैन होता है और जब बैन नहीं होता है?
आजकल हर चीज ऑनलाइन होता है, किसी को फॉर्म भरना हो ऑनलाइन, कॉलेज का फॉर्म भरना हो, किसी को नौकरी के लिए फॉर्म भरना हो, कोई सिलेक्शन लिस्ट आती है नौकरी की, तो सब कुछ ऑनलाइन होता है। लेकिन इंटरनेट अगर बैन होगा तो लोगों को पता ही नहीं होता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, ट्रांजेक्शन से बैंक की ट्रांजेक्शन से लेकर यूनिवर्सिटी के फॉर्म तक लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन है और इसको लेके सोचने की जरूरत है। मुझे अपनी अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो मुझे एक फॉर्म भरना था किसी यूनिवर्सिटी का, लेकिन वो मुझे उसके लिए फॉर्म भरने के लिए मुझे जम्मू आना पड़ा क्योंकि इंटरनेट वहां पे बंद था और लास्ट डेट आने वाली थी।
ये थी भारत प्रशासित कश्मीर से एक नौजवान की आवाज, जिन्होंने सोशल मीडिया और मोबाइल इंटरनेट पर लगी पाबंदी पर अपने तर्क रखे। भारत प्रशासित कश्मीर में ही दो दिन पहले एक नौजवान की आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई थी। ये कश्मीरी नौजवान भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट था, जिनका नाम उमर फयाज है। चरमपंथियों ने अगवा करने के बाद गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। हमारे सहयोगी माजिद जहांगीर दिवंगत लेफ्टिनेंट उमर फयाज के घर कुलगांव पहुंचे और ये रिपोर्ट आप तक पहुंचाई।
मैं जब गुरुवार को हल्की धूप में दक्षिणी कश्मीर के जिला कुलगाम के सटसन गांव में उमर फयाज के घर पहुंचा तो यहां घर के सहन में पीले रंग के शामियाने के अंदर से महिलाओं के रोने की आवाजें आ रही थीं। शामियाने में उमर फयाज की मां भी रो रही थीं, जो अपने बेटे की जुदाई में किसी से बात नहीं कर रही थीं। सहन में और भी लोग थे जो खामोश थे और सिर्फ एक दूसरे को देख रहे थे। दीदी मंगल को 22 साल के उमर फयाज, जो भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट थे, जिला शुपियान के हरमैन इलाके में अपने मामा के घर से उनका अपहरण कर हत्या की गई। उमर अपने मामा के घर शादी पर आए थे, बीते 9 दिनों से वो अपने घर छुट्टी पर थे। आजकल उमर जम्मू कश्मीर के अखनूर में अपनी ड्यूटी दे रहे थे। जब मैं उमर के 2 मंजिला मकान के अंदर गया तो दाएं हाथ के कमरे में करीब 20 लोग बैठे थे, जिनके बीच उमर के पिता फयाज अहमद परे भी मौजूद थे। वो अपने बेटे के गम में निराल थे, किसी से बात नहीं करते। मैंने 1 घंटे तक उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो खामोश रहे, जिसके बाद वो सिर्फ रोते रहें और रुमाल से अपने आंसू साफ करते रहें। उमर के ममेरे भाई 27 साल के मुदस्सिर इस बात से काफ़ी परेशान हैं कि अगर उमर अपने घर पर होते तो वो ऐसा नहीं होने देते। वो कहते हैं,
वो यहाँ पे घर में होता तो कोई भी अगर आता, कोई भी एजेंसी अगर होती, जो भी मतलब था, जो आया था वहाँ, अगर वो यहाँ भी आता तो ऐसी मतलब सिचुएशन हम क्रिएट कर दें यहाँ पे, मतलब ऐसे हम उम्र उनको उनके हाथ में नहीं देते, चाहे अगर हमारी जान भी क्यों ना मतलब उस टाइम जाएगी।
उम्र की आदतों को याद करते हुए मुदस्सिर कहते हैं,
गॉड गिफ्ट था, खाली वो मतलब वो गया वहाँ से किस्त में, वहाँ एडमिशन लिया उसने, नोटबुक उसने कभी नहीं बनाई, खाली जो सर दिखाता था या जो एक बार वो मतलब देखता था उस माइंड में रहता था।
मुदस्सिर कहते हैं कि बीते दिनों जब उमर घर पर आया था तो उस दौरान उन्होंने सेब के बाग में अपने पिता के काम में हाथ बटाया था।
ऐसे हमने उसको इससे पहले भी कहा था, अच्छा अब आपकी पोस्टिंग होने वाली है, अब तनख्वाह भी आपको मिलेगा, अब आपकी शादी मत करेंगे, ऐसे ही बच्चा था वो, जो किया उसको हमने, तो उसने वापस जवाब दिया, अभी मैं 22 साल का हूँ, 28 साल तक मुझे कुछ मत बोलो इसके बारे में, आप देखो मुझे क्या बनना है, मेरी ड्रीम्स क्या है और मैं कहाँ से कहाँ पहुँचूँगा आपको पता नहीं चलेगा।
उमर के एक और चचेरे भाई 30 साल के मुजफ्फर अहमद परे कहते हैं कि उमर को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था।
एक्चुअली जब वो घर पर आते थे वो मुझे भी कहते थे, मतलब मेरे साथ भी वो दोस्त की तरह भी रहता था, वो कहते थे मुझे भी क्रिकेट मैच कभी खिलाओ, मुझे भी कभी खिलाओ, वो बहुत जिद करता था। फिर मैंने उसको बहुत सारे मैच भी खिलाए इधर, मैं एज कैप्टन रहता हूँ यहाँ की टीम का।
मुजफ्फर कहते हैं कि उमर की मौत उनके खानदान के लिए एक बड़ा नुकसान है। वो बोले,
अभी भी हमें यकीन नहीं हो रहा है कि अभी मतलब वो गए इस दुनिया से, हमें लग रहा है अभी वो मतलब अभी ड्यूटी पे है, हमें ऐसा फील होता है, और ना हमें कभी लगेगा वो इस दुनिया से चले गए, बाकी कुछ नहीं कह सकता। हमारे गोद में खेले, वो बड़े हो गए हमारे गोद में, दो बहनें हैं उसके पीछे भी, एक ही लड़का था, ये तो सारा सदमा अब मानो उसके माँ बाप को ही हो गया, मानो जैसे उसका उनका कलेजा बाहर निकल गया।
उमर के एक दोस्त सहर अहमद कल से ही यहाँ उमर के घर में हैं। सहर को इस बात का काफ़ी रंज है कि उमर की जिस तरह से मौत हुई ऐसा उन्होंने सोचा भी नहीं था। गाँव के एक नागरिक गुलाम हसन कहते हैं कि जिस दिन उमर ने NDA पास किया तो पूरे गाँव को खुशी हुई। वो ये भी कहते हैं कि उमर यहाँ के युवाओं का रोल मॉडल बन सकता था।
बिल्कुल बिल्कुल पूरा गांव खुश हो गया उसके जाप से पूरा गांव खुश हो गया कि इतना मतलब ये यहाँ पर भी एक ऐसा लड़का निकला जो तमाम लड़कों के लिए रोल मॉडल बन सकता है।
बीते दो महीनों में यहाँ कई सारी राजनीतिक हत्याएं और चरमपंथ हमलों में कई सुरक्षा कर्मी मारे गए। माजिद जहांगीर, BBC श्रीनगर।
IPL में कल रात मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ। वानखेड़े स्टेडियम में रनों की ऐसी बरसात IPL के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुई। मैच में कुल मिलाकर 453 रन बने। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 230 रन बनाए। जवाब में किरण पोलार्ड की पूरी कोशिश के बावजूद मुंबई 7 रन से मैच हार गई। इसके साथ ही पंजाब ने प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा है। थोड़ी देर में भारत में बजेंगे सुबह के 7। इससे पहले कि हम समापन करें कार्यक्रम का, चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर सुनते हैं।
BBC समाचार। भारत के चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM की विश्वसनीयता पर उठे सवालों के बीच आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि न्याय विभाग के अधिकारी सिफारिश भी नहीं करते तो भी वह संघीय जांच एजेंसी यानी FBI के निदेशक जेम्स कोमी को हटाना चाहते थे। NBC TV को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने दावा किया कि कोमी अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रहे थे। मानवाधिकारों पर काम कर रहे संयुक्त राष्ट्र के दो विशेषज्ञों ने भारत सरकार से भारत प्रशासित कश्मीर में सोशल मीडिया और मोबाइल इंटरनेट पर लगी पाबंदी खत्म करने की अपील की है। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में हजारों लोगों ने जुलूस निकाला और निकोलस मादुरो की सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ये जुलूस बुधवार को विरोध प्रदर्शन के दौरान एक व्यक्ति की मौत के बाद निकाला गया। आर्कटिक क्षेत्र के 8 देशों के विदेश मंत्रियों ने ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन तत्काल कम करने पर सहमति जताई है। फ्रांस के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की पार्टी ने अगले महीने होने वाले संसदीय चुनावों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। BBC समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे दिनेश उप्रेती और इस कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला शाकिर आलम ने। नमस्कार भारत में आज इतना ही, हमारा अगला प्रसारण दिन भर शाम 7:30 बजे। तब तक संदीप सोनी के साथ समस्त सहयोगियों को अनुमति दें, नमस्कार।